ओम शांति। प्यारी प्यारी हमारी सभी माताएं, आज हम आपको अपने इस भट्टी के अंदर कौन सा परिवर्तन करना है, जो परिवर्तन अपने जीवन के लिए सदा के लिए एक अनुभव बन जाएगा। आज सुबह से ही हम सभी ने सुषमा दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, इनके अनुभव युक्त क्लासेस सुने और सचमुच ही ऐसा लगता है कि यह क्लासेस जो है, अनुभव युक्त ये बोल जो है, ये हमारे जीवन को परिवर्तन ही कर देते। क्योंकि माताएं वो शक्ति है जो एक परिवार को महान, शांत, शुद्ध प्रवृत्ति बना सकती है। माताओं की बाबा ने ये जो आज भट्टी का आरंभ किया है, फर्स्ट ग्रुप भट्टी का माताओं से शुरू हुआ है। क्योंकि माताएं जिस घर में शांत, शुद्ध, शीतल मन से भोजन बनाती है और वो भोजन जब सभी खाते हैं तो उसका असर सभी के मन पर होता है। और बाप दादा ने भी हम बच्चों को अमृत वेले का महत्व बहुत बताया है। अमृत वेला जो हम ध्यान में रखते हैं और अमृत वेले के ऊपर विशेष अटेंशन देते हैं तो हमारा दिन भर अच्छे से अच्छा जाता है। अभी आप देखेंगे भट्टी में हम आए हैं तो आप अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय कीजिए कि इस भट्टी के अंदर जो भी हम 5-7 दिन रहेंगे तो रोज अमृत वेला हमें बहुत बहुत पावरफुल करना है। और अमृत वेला हमारा पावरफुल हो उसके लिए पहले से दिन भर हमको क्या करना होगा? दिन भर हमें एक तो अपने मन को शुद्ध, श्रेष्ठ समान को देना है। दूसरा, हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं, उन विचारों को श्रेष्ठ और सतो प्रधान बनाना है। तीसरा, हमारे जीवन के अंदर जो भी व्यक्तियां आते हैं, कोई हमारे मन को सुख देने वाले होते हैं, कोई मन को डिस्टर्ब भी करने वाले होते हैं, कोई हमारे मन को थोड़ा हलचल में लाकर हमको परिवर्तन के तरफ ले जाने वाले होते हैं, उन आत्माओं को भी हमें शुभ भावना, शुभकामना देनी है। जब हम शुभ भावना, शुभकामना देते हैं तो सचमुच उसका बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकलता है। जब हमारी कोई आत्मा के साथ पिछले जन्मों का अकाउंट बाकी है तो उस अकाउंट को पूरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण साधन है शुभ भावना, शुभकामना। जब उस आत्मा का हमारा अकाउंट रहा हुआ है, हिसाब किताब रहा हुआ है, तो वो हिसाब किताब पूरा होगा कब? किससे? तो शुभ भावना से। और ये शुभ भावना बाबा ने जो कहा कि बच्चे तुम्हारे पास सभी से बड़ा ये एक यंत्र है, ये मंत्र है या एक जादू की छड़ी है, वो है शुभ भावना। आप देखेंगे शुभ भावना का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। मैं अपने जीवन का भी आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। हमारे पास कई बाबा के बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं और जैसे हम नई मुंबई में रहते हैं तो वहाँ अलग अलग कंपनीज हैं, तो वहाँ कंपनियों में आजकल की युवा पीढ़ी काम करने के लिए सारे भारत से आते हैं। तो शुभ भावना कैसे काम करती है वो एक उदाहरण बताती हूँ। तो हमारे पास दो कन्याएं आती थीं और वो दोनों कन्याएं सर्विस करती थी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में सर्विस करती थीं। और आपको मालूम होगा कि आज के जमाने में नव पीढ़ी जो है वो बच्चे लोग पढ़ाई इतनी पढ़ते हैं और जहाँ कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में कहाँ कहाँ से अलग आते माता पिता को छोड़कर और कहीं कहीं पर अपना कमरा लेके रहते हैं और किराया बहुत होता है, तो इसलिए तीन चार कन्याएं मिलकर के रहती थी। और वो तीन चार कन्याओं में से एक कन्या ऐसी थी जिसको बाबा की बहुत लगन थी और वो रोज बाबा का ज्ञान सुनने के लिए आती थी, लेकिन वो मन में बहुत डिस्टर्ब रहती थी और मन में ये लगता था कि मैं इतना अपने माता पिता को छोड़ के आई हूँ, लेकिन ये जो मेरी सहेलियां हैं जो घर में रहती है साथी, ये तो चार अलग अलग घर से आई हुई है, हरेक के संस्कार अलग है, हरेक का स्वभाव अलग है और हरेक का माता पिता ने सिखाए हुए संस्कार अलग है, मैं कैसे एडजस्ट हूँ। तो उसमें से उसको जो बहनें रहती थी साथी, एक बहन जो थी उसके प्रति तो उसको बहुत नफरत हो गई थी और बहुत टेंशन रहता था। जब हमें बताया कि दीदी ये एक मेरी जो सहेली है ये मुझे बहुत तकलीफ देती है, और मैंने पूछा क्या तकलीफ होती है आपको, तो बोला कुछ नहीं, मुझे मेरे मम्मी ने सिखाया घर संवार के रखना है, साफ सुथरा रखना है, हर चीज जगह पर रखनी है और ये जो मेरी सहेली है वो जहाँ की चीज वहाँ ही रख देती है, बर्तन उठाया वैसे ही रख दिया और घर में सफाई बिल्कुल नहीं रखती है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। और आपको मालूम होगा आजकल कंपनियों में एक व्यक्ति काम करता है, उसको दो व्यक्ति का पगार मिलता है और उसको काम तीन व्यक्ति के करने पड़ते हैं। काम तो उसको कितना देना पड़ता है कंप्यूटर पर, तीन लोगों का काम करता है तो शिफ्ट ड्यूटी होने के कारण उसको तीन चार ड्यूटी भी एक साथ करनी होती थी। तो हमने उनको बताया कि देखो बहन, आप इस बहन के साथ आपको थोड़ा नफरत है या थोड़ा दुख होता है तो आप एक बाबा का व्रत ले लो कि इस आत्मा के लिए मैं दिल से शुभ भावना शुभकामना रखूंगी, क्योंकि ये आत्मा पिछले जन्म का हिसाब लेके आई है मेरे साथ, तभी मुझे इसके साथ डिस्टर्ब होता है, उसको देख के मुझे टेंशन आता है, उसके कर्म को देख के मुझे दुख होता है, तो आप निश्चय से और दिल से उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो और मन में ये निश्चय रखो कि ये मेरी बहन है, ये आत्मा भाई है, ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी हो जाएगी और ये अच्छी है। तो मैंने उसको जब ये बताया तो बोला ये कहाँ अच्छी है, वो तो बहुत खराब है, बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। मैंने कहा नहीं बहना, आप थोड़ा ढूंढो उसके अंदर कौन सा गुण है। बोला गुण बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत सोचा कौन सा गुण है, गुण तो मुझे दिखाई नहीं देता है, अवगुण ही दिखते हैं। मैंने कहा नहीं, आप ढूंढो उसमें क्या गुण है। तो उसने बोला इसका गुण एक है कि इसके पास से पैसे मांगेंगे ना तो वो फिर से मांगती नहीं है। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बारी कुछ पैसा लिया, थोड़ा जरूरत पड़ी, पैसा मांगा तो वो फिर से वापस उसको देने के लिए वो मांगती नहीं है, जब भी दे दो। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया गुण है उसका, वो आपको तकलीफ में मदद भी किया और फिर मांगती नहीं, जब भी तुम्हारे पास आएगा तुम दे दो। मैंने कहा ये गुण आप रोज उसका याद करो। और क्या गुण है। बोला और कुछ तो नहीं दिखता है, लेकिन और मैंने कहा ढूंढिए आप कौन सा गुण दिखता है। तो बोला ये है ना, कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। मैंने कहा ये भी बहुत सुंदर गुण है, आप जब थक के आते हैं तो आपको क्या देती है, कॉफी तो बना के देती है, तो ये दो गुण है। तो आप ये रोज उसके गुण को देखो, अवगुणों को देखो नहीं, और उसके प्रति बहुत 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 शुभ भावना रखो और बाबा से किरण ले लो और अमृत वेले खास बाबा को याद करो कि बाबा के साथ बुद्धि योग जुटाओ कि प्यारे बाबा मेरा माता पिता बंधु सखा है और उसके साथ इतना प्यार का रिलेशन लगाओ और बाबा की शक्ति की किरण मुझ आत्मा पर बरस रही है और ये शक्ति के किरण मेरे ऊपर आके मैं भरपूर हो गई और मेरी शक्ति में से उस आत्मा को भी थोड़ी शक्ति उस आत्मा को भेज रही हूँ, जिससे वो आत्मा का जो मेरा अकाउंट है पिछले जन्म का वो पूरा हो जाए। तो ऐसा थोड़ा दिन करने के लिए कहा, तो इसमें एक डेढ़ मास बीत गया, वो रोज आती थी तो, लेकिन एक दो डेढ़ मास के बाद एक दिन वो जो बहन रोज रेगुलर बाबा के क्लास में आती थी वो आई मेरे पास और उसने कहा कि दीदी आपको एक बात सुनाती हूँ। तो हमने कहा क्या बहन जी? तो बोला कि मैं डेढ़ पौना दो मास हुआ मैं शुभ भावना शुभ कामना रखती हूँ और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला एक कल मेरा बर्थडे था तो मैं पहले बर्थडे के दिन पहले तीन शिफ्ट किया, नाइट भी किया दोपहर की भी किया और दिन की भी रात शाम की भी किया, ऐसे तीनों शिफ्ट करके थक करके मैं आ रही थी घर में। अब जैसे मैं लिफ्ट से बाहर आई, मेरा ऊपर तीसरे मंजिल पर घर था, तो मैं आते ही देखा तो मेरा कमरा खुला था और जैसे ही मैं गई अंदर तो अगरबत्ती की खुशबू थी और घर पूरा बहुत साफ सुथरा किया हुआ था, पलंग पर चद्दर रखी थी, किचन भी बहुत साफ था, हर कपड़े जगह पर रखे हुए थे और बहुत सुंदर वातावरण बनाया हुआ था। और मेरी जो सहेली जिसके साथ मेरा हिसाब किताब था वो आई और उसने मुझे शेकहैंड किया, बोला हैप्पी बर्थडे और आज आपके बर्थडे की गिफ्ट है आज घर की सफाई। तो ये जो घर की जो सफाई किया और घर जो टॉप टिप रखा, तो बोला मैंने आज से दृढ़ संकल्प किया कि आपको मैं बर्थडे की गिफ्ट और कुछ नहीं दूंगी लेकिन रोज आपसे सफाई का गुण मैं सीख लूंगी। और रियल में वो इतनी खुश थी कि देखो मेरा शुभ भावनाएं जो है वो उस आत्मा तक पहुंचती है। तो देखो आजकल के जमाने में आप सभी माताएं अनुभव करते होंगे कि आजकल हमारी नव पीढ़ी बच्चे हैं पोते हैं, घर में आपके छोटे पोते भी हैं और बच्चे भी हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको मुख से बोलने से कुछ फायदा नहीं है। आप उनको मुख से बोलेंगे ना कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या हो जाता है? बच्चे कहते मम्मी लेक्चर मत दे दो, आपका लेक्चर तो हमेशा रोज का ही है रिकॉर्ड करके रखे, तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं और भी हमारी एक्टिंग करते हैं बच्चे। इसीलिए बच्चों को पोतों को जो भी है घर में या बहू है आपकी जो भी है उन सभी के लिए हम आज इस भट्टी से दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि मुझे सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। कभी भी जरा भी किसी के प्रति हमारे मन में ये विचार न आए कि ये तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है या घर में मेरी कोई मानता ही नहीं है। लेकिन आपको समझो उनको मर्यादा सिखानी भी है या जो अच्छी बात सिखानी है। समझो आजकल के बच्चे देरी से उठते हैं और आपके मन की इच्छा है कि बच्चे जल्दी उठ जाएं, सुबह जल्दी स्नान पानी करें, रात को जल्दी सो जाएं, तो आप ये बोलो नहीं लेकिन मन ही मन में जब आप भोजन बनाते हो या मन में दृढ़ संकल्प करो कि बाबा इनको अच्छी बुद्धि देना, ये भी सुबह जल्दी उठ जाए, इनके मन को शक्ति आ जाए उठने की, क्योंकि आज के नव पीढ़ी को इतनी ताकत भी नहीं है अपने अंदर परिवर्तन करने की और दुनिया का जो माहौल है वो भी बहुत ही कलयुगी है। इसीलिए हम जो बाबा के बच्चे जिस घर में है वो एक दीप स्तंभ के समान है। तो ये आप सभी जो माताएं हैं वो हर एक माता अपने घर की दीप स्तंभ हूँ। जैसे दीप स्तंभ सागर किनारे पर होता है और वह सागर किनारे पर रात के समय दीप स्तंभ क्या करता है, सभी को रास्ता दिखाता है। तो आप एक एक विशेष आत्मा हो माताएं, और आप माताएं सभी को रास्ता दिखाने वाली हूँ, सभी को अपना शुभ भावना से मार्ग दिखाने वाली हूँ। इसीलिए हमें मुख से बोलने का जमाना गया, मुख से किसी को सुधारने का समय नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा बाबा ने मनसा सेवा का यंत्र दिया है। मन हमारा इतना शक्तिशाली है कि इस मन के द्वारा हम एक सेकंड में लंदन भी पहुंच सकते हैं, दिल्ली भी पहुंच सकते, मुंबई भी पहुंच सकते। कितना भी दूर व्यक्ति है, आप उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना के प्रकंपन भेज सकते। ये जो शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं है, ये हमारे जीवन को शक्तिशाली बना देती है। दूसरी बात है कि शुभ भावनाएं और क्या काम करती है, शुभ भावनाएं ये जैसे कि शुभ भावना पहुंचती है, उसी तरह से अशुभ दुर्भावनाएं भी पहुंचती है, जो बुरी भावनाएं वो भी पहुंचती है। इसीलिए हमारे मन को हमें शुभ भावना रखना है, एक भी अशुभ भावना नहीं रखनी है। बताते हैं कि एक चंदन के लकड़े का व्यापारी था, और वो जो चंदन के व्यापारी लकड़े का था, उसका संबंध उसकी दोस्ती राजा के साथ थी। बहुत दोनों का प्यार था, बहुत स्नेह था, और आपस में दोनों बहुत मिलते जुलते थे, दिल की लेन देन करते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों का जैसे कि प्यार कम कम होता गया। इधर क्या हो गया, जो चंदन के लकड़े का व्यापारी जो था, वो राजा से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो सोच रहा था क्या हो गया कि राजा के लिए मुझे थोड़ा प्यार कम होता जा रहा है, और राजा को भी मन में आ रहा है कि अभी ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आए तो अच्छा है, इसके साथ मैं न मिलूं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो चंदन का व्यापारी था, उसने जब अपना सारा धंधे के अंदर देखा और सारा माल देखा गोडाउन में कि मेरे चंदन बिक ही नहीं रहा है, मेरी लकड़ियां कोई ले नहीं रहा है, लेकिन ये मेरी लकड़ियां कब बिकेगी, तो उसके मन में सूक्ष्म ये संकल्प आया, ये लकड़ियां तभी ज्यादा बिक सकती है जब राजा मरेगा। जब राजा मरेगा तो नेचुरली किस में जलाएंगे उसको, चंदन में जलेगा तो मेरा धंधा हो जाएगा। ये सूक्ष्म उसके मन में ये विचार आने के कारण राजा को भी उससे क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी नफरत आने लगी कि ये नहीं मिले तो अच्छा है। तो एक दिन क्या हो गया, दोनों से भी बहुत दूरी हो गई, लेकिन दोनों पहले तो बहुत प्यारे दोस्त थे। तब एक दिन दोनों मिले, तब उन्होंने कहा, पता नहीं राजा ने कहा, मुझे ना तुमको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तुम नहीं मिलो तो अच्छा है। और इसने भी कहा, मुझे राजा तुम अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तुम भी नहीं चाहिए। तो बोला ऐसा क्यों हो गया अपने दोनों में। तो दोनों ने एक दूसरे को बताया अपने दिल की बात। बोला पता नहीं मेरे मन में ऐसा पाप का विचार क्यों आया कि ये मेरे चंदन के लकड़े बिक नहीं रहे हैं, ऐसा लगा कि तू मरेगा तभी ये बिकेगा। क्योंकि गहरी दोस्ती थी दोनों की, एक दूसरे को दिल की बात बता दिया। तो बोला ऐसा पाप का क्यों मेरे लिए तुमने सोचा। तो बोला देखो, अब तुम्हारे मन में तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है और तुमने मेरे लिए ये बुरा भी सोचा है, तो आज हम एक भगवान के पास जाके प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सच्चे दोस्त हैं, हम कभी नफरत नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन ये जो चंदन की लकड़ियां है, इस लकड़ी का क्या करेंगे। तो राजा ने बहुत सुंदर बात बताई कि तुम्हारा भी धंधा हो जाए और मेरा भी पुण्य हो जाए, तो आज से हम दृढ़ संकल्प करते ये सारी जो चंदन की लकड़ियां हैं इसका एक सागर के किनारे पर बहुत बहुत सुंदर शिव का मंदिर बनाते हैं। और वो दोनों ने मिलकर के शिव का उसकी लकड़ियां भी बिक गई और राजा ने भी अपने पुण्य जमा किए और वो चंदन का सुंदर मंदिर बन गया। और उस मंदिर में जो भी सभी लोग आते हैं वो भगवान की भक्ति करते थे और वो गांव भी सुधर गया। तो देखिए मन के अंदर जैसे शुभ भावना पहुंचती है वैसे ही अशुभ भावनाएं भी पहुंचती है। इसीलिए कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति हमें जरा भी सूक्ष्म में भी बुरा विचार नहीं करना है। और हम बाबा के जो बच्चे ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मणों की भावनाएं बहुत जल्दी पहुंचती है। तो इसलिए आज से हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि कभी भी किसी के भी प्रति अशुभ भावना नहीं। आज आप मन के अंदर सोचो कौन सी आत्मा जो है जो मेरे को थोड़ा तकलीफ दे रही है या थोड़ा हिसाब किताब उस आत्मा का मेरे पास है तो उस आत्मा का आज से मुझे पूरा करना है। आज से वह हिसाब किताब को मुझे चुप्त करना है और मुझे सर्व के लिए शुभ भावना देना है। ये शुभ भावनाएं बहुत बड़ा काम करती है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। सास और बहू की, सास और बहू की वैसे भी कहा जाता है एक नाम हो गया है कि सास बहू की बनती नहीं है लेकिन शुभ भावना बहुत काम करती है। एक सास और बहू थी तो दोनों का आपस में बनता नहीं था तो जो बहू थी उसको ऐसा लगता था कि ये जन्म भर मेरे को ये सास का करना है तो इससे तो ये मर जाए अच्छे। तो अपने मायके में गई, मायके में गई तो मायके में जाने के बाद उसने माँ को भी ये बताया कि माँ ये सास बहुत तकलीफ देती है मुझे क्या करूँ। तो उसकी माँ ने बताया अपने गुरु महाराज है ना वो बहुत जड़ी बूटियां देते हैं तो उनके पास जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर गुरु महाराज ने को कहा कि सास हमको तकलीफ दे रही है क्या करूं। तो बोला कि कोई बात नहीं बेटी, सास तुमको तकलीफ देती है तो मैं उस तुम्हारे को 30 दिन के लिए 30 पुड़िया देता हूँ और ये 30 पुड़िया जो है वो रोज तुम उसको 11-12 बजे के बीच में भोजन बना के उसमें मिला के खिला दो तो क्या हो जाएगा 30 दिन में धीरे धीरे वो बूढ़ी क्षीण होती जाएगी और मर जाएगी। बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एकदम खुश हो गई, ससुराल में आई, दूसरे दिन से जल्दी उठ के खाना पकाया, भोजन कराया। माताजी को कभी 1-1.5 बजे के पहले भोजन नहीं देती थी, उस दिन 11 बजे ही भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी सब भोजन खिलाया, बड़े प्यार से भोजन कराया। सास को लगा मेरी बहू तो मैके से आई बहुत बदल गई, बहुत अच्छी हो गई। दूसरे दिन भी यही दिन तरीका रहा, तीसरे दिन भी रहा तो सास सब जगह महिमा करने लगी मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और फिर उसको सब्जी काटने में मदद करने लगी, उसको हर बात में हाथ बटाने लगी। 8 दिन के बाद बहू कहाँ बाहर जा रही थी तो सास ने कहा बेटा तुम बहुत अच्छी मेरी सेवा करती हूँ तो ये गहना मेरा है ना ये तुमको एक ले ले तुम पहनना, मैं तो कहाँ जाती नहीं है। तो बहू को लगा कि ये तो सास मेरी बहुत अच्छी है, इसने मुझे गहना भी दिया और मेरा मदद भी करती है। तो ये भी बोली बहुत अच्छी मेरी सास, और ये बोले मेरी बहू बहुत अच्छी भोजन खिलाती अच्छा अच्छा मुझे। तो ऐसा करके 20-25 दिन हुआ, दोनों का प्यार बहुत बढ़ गया कि मेरी सास बहुत अच्छी है, वो कहे मेरी बहू बहुत अच्छी है, और ये पुड़िया तो देती रही। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं कितना पाप कर रही हूँ, बहू के मन में विचार आया कि मैं तो सास को क्या कर रही हूँ, मारने की पुड़िया खिला रही हूँ, इसने तो मुझे गहने दिए, कपाट की चाबी दी, बच्चा इतना अच्छा मेरा पति, घर दार सब दे रही है और मैं क्या कर रही हूँ। तो वो भागी मैके और अपने गुरु को कहा आज 27 दिन हो गया मैं सास को खिला रही लेकिन वो बहुत अच्छी है मेरी सास, बहुत प्यारी है, बहुत मेरी माँ है वो, आप उसको मरने से बचाइए प्लीज। अभी ये जो मरने की पुड़ी है ये चेंज करके आप जीने की पुड़ी दे दो। तब वो गुरु महाराज मन में हंसे और उन्होंने कहा, बेटा बेटिया, मैं तुम्हारी सास को जो पुड़िया दी थी वास्तव में वो कोई मरने की पुड़िया नहीं थी, लेकिन ये जो तुम्हारी सांस है इसको तो पाचन शक्ति बढ़ाने की वो पुड़ी थी, और भी इसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। वास्तव में मैंने तो सोचा था, बात तो कुछ भी नहीं थी, तुम्हारी भावना उसके प्रति सांस की अलग भावना थी और सांस की भावना तुम्हारे प्रति अलग थी। जब दोनों की भावनाएं बदल गई तो रियल में आप दोनों का प्यार हो गया। तो देखिए, बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि प्यारे बच्चे, झगड़ा कोई बात का नहीं है, क्लेश कोई बात का नहीं है, किसी भी बात में तकलीफ नहीं, सब अच्छा हो जाता है, सिर्फ तुम शुभ भावना शुभ कामना रखना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय शीला दीदी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया कि अच्छा कहलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी भावना रखो तो खुद अच्छे बन जाएंगे और सब अच्छे दिख जाएंगे।